सुख यहाँ लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सौवसाहुं अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे
नमः। सहजानंद जी लिखित यह सुख यह नामक प्रथम भाग में पृष्ठ संख्या 45 पर हम आ गए। 45 ऊपर से 9वीं लाइन अभी वहां से पढ़ेंगे। यानी कि सुपुत्र हुआ तो भी दुखी, कुपुत्र हुआ तो भी दुखी, ऐसी बात हुई थी कल। हाँ, नहीं हुआ तो भी चलो ठीक है, नहीं हुआ तो कम दुख है, हुआ तो ज्यादा दुख है। पुत्र मोह, क्योंकि मोह है ना, पहले तो अभावात्मक है, कुछ नहीं है, नहीं है वाला दुख था, होने पर इतना तीव्र मोह उसके प्रति है तो उसके कारण और दुखी होता रहता है। तो दुखी है, पता नहीं, पता नहीं हमको तो हमको कभी दुख नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात है।
अनुभव बोल रहे काय को तुम सूत्र नहीं उसका रहे।
केवल ज्ञानवान ही दुख नहीं मानता, यानी ज्ञानी ही उसमें दुखी नहीं होता, वह सब परिस्थितियों में सुखी रहता है क्योंकि उसमें सच्चा ज्ञान है। अतः अपने ज्ञान बल के कारण ही आत्मा आनंद पाता है, क्योंकि वो तो समझता है, अनुभव पूर्वक जानता है कि मैं तो चैतन्य मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, पर पदार्थों का कुछ करने मेरा उनका कोई लेना देना नहीं, संबंध नहीं है। यानी हम ही उसको ये मेरा मेरा मानकर उसकी विशिष्ट परिणति चाहते हैं, विकल्प करते रहते हैं और उससे दुखी है। फिर यह भी तो सोचो कि मैं ही किसका रक्षक हुआ। भैया यह सब भ्रम है। यह बात हुई थी कि अनेक प्रकार के दुख सहन करता है और दुख के समय उसका कोई भी रक्षक नहीं है, और ये स्वयं भी दूसरे का रक्षक नहीं हो सकता। किसी का किसी से प्रेम है तो दुख, और वैर है तो ही दुख। अन्य पदार्थों की ओर उपयोग गया कि दुख है, केवल उपयोग से नहीं क्योंकि इसका मोह के साथ, क्योंकि जहां उपयोग गया कि मात्र ज्ञान नहीं करता है, उसके साथ उसका राग द्वेष का परिणाम भी चलता है। यानी उसमें वो इष्ट अनिष्टता चलती रहती, उसकी बुद्धि कुछ देखा, कुछ कलर भी देखा, तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, वहाँ तो कुछ ना कुछ उसकी चलती बात था, इसलिए वो अपने विकल्प से राग द्वेष के कारण दुखी होता है। तो अज्ञानी है तो पर पदार्थों की तरफ उपयोग किया कि दुख है, इसलिए उसको पर को जानने में दुख बताया, क्योंकि वो इष्ट अनिष्टता पूर्वक जानता है और उसमें राग द्वेष के बिना नहीं रहता। और अपनी ओर गया, अपने स्वरूप की ओर ध्यान दिया तो सुख ही सुख है। सबसे बड़ी विपदा तो संकल्प विकल्प अज्ञान विषय वासना इनकी है। हम देखते ना, इच्छा ही इसका दुख है, राग द्वेष ही इसके दुख है, और ये विकल्प कौन से, राग द्वेष वाले जो विकल्प है, संकल्प करता रहता है मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये सब उसके दुख है, यही बड़ी विपदा है। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया, उसका उसमें परिणमन हुआ, मुझे क्या, किसकी ताकत है कि मुझे दुखी कर दे और किसकी ताकत है कि मुझे सुखी कर दे। ये ना दूसरा कोई कर सकता है ना ये दूसरे को सुखी दुखी कर सकता है, फिर भी मानता रहता है, खुद का ही परिणमन दुख पहुंचाता है और खुद का ही परिणमन सुख पहुंचाता है। यानी दुख रूप और सुख रूप परिणमन तो अपने में होता है। वे बिरले ही ज्ञानी जीव हुआ करते हैं जो समता परिणमन रख सोचते हैं, मेरा कौन और पराया कौन। जिसे हम अपना मानते हैं वही तो दुख का विपदा का कारण बनता है, अन्य पराये क्या बनेंगे, जबकि उनमें उपेक्षा भाव है। क्योंकि अन्य के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं है तो उनके कारण हम सुखी दुखी भी नहीं हो रहे। तो अपना लगाव जिनसे है, अपना मोह है जिनसे, ममत्व भाव जिनसे है, उनके कारण यहाँ का प्रेम भी और दुश्मनी भी दोनों ही दुख दे रहे हैं। तो सबसे अधिक विपदा तो इनसे ही है जिन्हें हम अपना मानकर दुखी हो रहे हैं। ये मान्यता ही दुख का कारण है, क्योंकि ये मेरा है और फिर उसका अमुक परिणमन चाहिए और वो नहीं हो रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव का, प्रत्येक पदार्थ का, पुद्गल का भी परिणमन उसके अपने में है और वो निश्चित है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी विकल्पों से हम दुखी हैं। वास्तव में देखा जावे तो यही मेरी आत्मा का स्वरूप न जानने देने वाले यही बाधक है। जिनके प्रति हम ममत्व भाव रख रहे हैं सच देखो तो वो ममत्व भाव बाधक है, परंतु उपचार से क्या कहेंगे, इन ये हमारे में बाधक है। वे मेरे है नहीं उन्हें मानना भ्रम है, यानी वे मेरे है ऐसा मानना भ्रम है और हम दुखे वो अपने भ्रम से दुखी है। और यदि कुछ है तो दुख के देने वाले है, तो उन्हीं को कहने में आता है कि वे हमको दुख दे रहे हैं। हमारा ममत्व परिणाम है, मोह परिणाम है, हमने उसको इष्ट अहिष्ट जो कुछ मान लिया है और वो मान लेते कोई संयोग है और वो संयोग अभी अपने से छूटने की कल्पना से हम और दुखी हो जाते हैं। उन्हें प्रेम से देखो तो दुख और विरोध से देखो तो दुख। सुख प्राप्त हो सकता है तो ज्ञान बल से ही हो सकता है, यानी हम तो मात्र उसके ज्ञायक है, तो ज्ञायक नहीं मानकर हमने उसके करने वाले, रक्षण करने वाले या नहीं करने वाले इस तरह से मान रखा है तो हम दुखी दुखी होते, कर नहीं सकते और विकल्प तो बहुत करते हैं। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ दुख ही दुख है, ज्ञानी तो दृष्टा है यानी ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञान बल में जैसे जैसे वस्तु का स्वतंत्र स्वरूप समाता जाता है वैसे वैसे ही विषयों से राग हटता जाता है। क्या कहना चाहते हैं, ज्ञान बल से ने ज्ञान में जैसा दृढ़ निर्णय होता चला जाता है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है और वो अपने से ही स्वतंत्र रूप से परिणमित हो रही है, मैं तो अपने ज्ञान में ही वो जानने की ताकत है कि मैं सबको जान रहा हूँ, वो वस्तु के कारण मैं जानता हूँ ऐसा भी नहीं है। तो कहते ये जो वस्तु की स्वतंत्रता जितनी अधिक दृढ़तर भाषित होती है वैसे वैसे विषयों से राग हटता जाता है। अतः सुख के लिए जो अनेक प्रयत्न करते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं, बाहर की ओर विषयों से सुख प्राप्त हुआ ऐसा होगा ऐसा मानकर जो प्रयत्न कर रहे हैं, हम उनकी अपेक्षा यह प्रयत्न करें कि जो वस्तु का स्वरूप है वह हमारी दृष्टि में अधिक से अधिक आवे। सुख के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं उसके बदले क्या करना है, वस्तु स्वरूप जो है, वस्तु स्थिति जो है, वो हमारी दृष्टि में अधिक से अधिक आ जाए, यानी हमारे सही निर्णय हो जावे। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसका अपना परिणमन स्वतंत्र उसके अपने से होता है, अधिक से अधिक आवे तो अधिक सुख अथवा शुद्ध आनंद मिलेगा, तो ही हम उनसे हटकर विमुख होकर अपने सम्मुख हो सकते हैं, अपने में समा सकते हैं और आनंद अपने पर्याय में प्राप्त होता है। हम स्वयं ज्ञानवान है पूर्ण है, ये पूर्ण कह दिया, कब कह दिया, अभी वर्तमान में ज्ञान की अधूरी अवस्था है, राग द्वेष के परिणाम अभी है, तभी भी ये तो पर्याय है। और द्रव्य पूर्ण है कि नहीं है, द्रव्य क्या स्वभाव तो पूर्ण है परंतु द्रव्य भी पूर्ण है। द्रव्य तो हम कहेंगे ना पूरे गुण और पर्यायों का समूह, तो गुण भी है पर्याय भी है, कौन से वो नहीं पूछ रहे, पर्याय है कि नहीं है, तो गुण और पर्याय मिलकर पूरा द्रव्य है कि नहीं वहां पर, यानी वो पर्याय क्या चल रही है, कैसी चल रही है, विभाव रूप है कि उसकी चिंता मत करो। तो तो उसके पीछे पूरा द्रव्य स्वभाव पड़ा हुआ है।
अपना ध्यान तो मेरे में पाप परिणाम नहीं आ रहे ना,
हाँ बस
वो परिये परी नजर,
ये भावों की तरफ, ये भाव करो कि वो भाव करो, इस तरफ अपना लक्ष्य, और मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा, यानी वो भी पर्याय की बात है, यानी उतना ही अपने को माना कि वो सम्यक दर्शन हो जाए तब हम पूर्ण हो गए कि अब हम पूर्ण है ही, उसकी बात है। यानी जब स्वभाव में दृष्टि यानी मैंपना जब हम स्वभाव में स्थापित करते हैं तो स्वभाव तो परिपूर्ण ही होता है हमेशा हर समय, तो यही कहते हैं मैं पूर्ण।
भोपाल में पूछते थे
हाँ
कि हम कैसा परिणाम रखेंगे, हमारे खोटे परिणाम नहीं आएंगे,
हाँ क्योंकि
यानी उसमें भी आश्रम में भी अच्छा बुरा ये ठीक कर रहे
हैं, हाँ और उसमें भी आयु कब बनती है तब हम परिणाम अच्छे रखें यानी मात्र अगले पर्याय नक्की करनी है उनको, ये सब भ्रमणा है, अरे अज्ञान के कारण होता है कि नहीं नहीं ऐसा परिणाम, अरे पर हर समय परिणाम हो रहे हैं, यानी लोगों को ये भी पता नहीं कि गति हर समय बन रही है, आयु कभी कभी बन रही है, तो हर समय का जो परिणाम है उस परिणाम के अनुसार वहाँ हो रहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, उसके हमें कौन सी गति बांधना है कि नहीं बांधना उसकी चिंता ही नहीं करना है, हम उस बंध से रहित है, भिन्न है, और वो राग द्वेष से भी भिन्न है ये नक्की करना है पहले में पहले, यानी प्रोसेस इतना सीधा है परंतु इसने कुछ कठिन मान के रखा, क्योंकि किसमें क्यों हेरा फेरी करना चाहते हैं, राग द्वेष में ऐसा पलटा हूँ तो मेरे ये कर्म बंध नहीं होगे वो कर्म बंध होगे, यानी क्या माना उसने, राग का भी करता माना और बंध का भी करता माना, और उसके कारण वो संयोग भी कुछ चाहते जो अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है, क्योंकि ये नहीं करना वो करना उसमें क्या है कि इसका फल बुरा होगा ना, मुझे वो नहीं चाहिए, यानी बंध का अच्छा फल भी चाहता है, यानी बंध भी चाहता है वो, हाँ सात तत्व में भूल है वो, है ना शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार, अपना पद तो भूलता ही है उसकी बात सोचता ही नहीं है, अब बस मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, परिणाम कैसे रखूँ, मुझे क्या मिलेगा फल, इसी की बात सोचता है, मैं कौन हूँ उसकी कैसे उसका अनुभव करना वो बात नहीं सोचता, यहाँ लिखा ना मैं ज्ञान, हम स्वयं ज्ञानवान है पूर्ण है, ये तो हमने तो ये पंचाध्याय में भी देखा था ना, हम स्वयं सिद्ध है परिपूर्ण है अनादि अनंत है, कहाँ तो मेरा चैतन्य स्वरूप और कहाँ विषय वासनाओं में फंसा हुआ मैं, ये मैं जो है वो पर्याय रूप से कहाँ फंसा है अभी, विषयों की इच्छाओं में पड़ा है और उसकी पूर्ति के पीछे लगा है, इच्छाओं की पूर्ति करने से मैं सुखी होऊंगा मानता है और उसी के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं, जैसे गिदड़ों में फंसा हुआ शेर अपने को गिदड़ मानता है किंतु उसे यह ज्ञान हो जाए कि मैं शेर हूँ तो फिर देखो वही दशा मेरी भी है, हमने अभी अपने को ये पर्याय जितना मान लिया है, तो हम हीन दीन है ऐसे है विकारी है रागी द्वेषी है, अरे परंतु स्वभाव की दृष्टि करो तो मैं तो भगवान आत्मा हूँ तो देखो फिर कैसी मेरी दशा होती है आगे वही विकार, मेरा तो स्वरूप भगवान जैसा है, तो हम भी भगवान की जाति के जैसे वो शेर के बच्चे को पता चलता है मैं सिंह हूँ तो कैसे अंदर से जोर आता है उसको, तो मेरा स्वरूप तो भगवान जैसा है, और पर्याय का एक क्षण मात्र वाली है और पूरे स्वभाव के सामने पर्याय कुछ भी नहीं है, तो हमने स्वभाव में मैंपना स्थापित किया तो कितना अंदर से बल आ जाएगा ना कि मैं तो परिपूर्ण हूँ सामर्थ्यशाली हूँ कुछ मेरे में कमी नहीं, मुझे कुछ नहीं प्राप्त करना बस मैं हूँ, भगवान के दर्शन करने का यही तो प्रयोजन है और है क्या, क्योंकि भगवान के सामने कुछ मांगना तो है ही नहीं है, भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें अपने स्वभाव के दर्शन वहाँ होंगे, केवल वो बाह्य उनके शरीर को देखने से कुछ नहीं होगा, वहाँ उनकी जो गुणों के प्रति हम अवित्रागता है सर्वज्ञता है, यदि इच्छा रखकर दर्शन किए कि भगवान हमें सुख दुख देने वाले हैं इनकी पूजा करें तो क्या सुख दे देंगे, तो इन परिणामों में निर्मलता कहाँ, ये तो मिथ्यात्व है अज्ञान है, क्योंकि ये सारी दुनिया भगवान के सामने गिड़गिड़ाती है कि मेरी बिगड़ी बना दो और मेरा ये कर दो मेरा ये, तो कोई भी कौम में चले जाओ यही बात कर रहे हैं। निर्मलता तो वहाँ है जहाँ आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद सत चित और आनंद सोचा जा रहा है। नहीं, पेज नंबर वही बराबर है ना? बराबर है। यानी निर्मलता कब होगी कि तत्व निर्णय में उसकी निर्मलता, आत्मा के सही स्वरूप के बारे में हम सोचेंगे। विकल्प है परंतु उसके निर्णय, निर्णय की यानी जो तत्व का निर्णय तो विकल्प की भूमिका में होगा और फिर अन्य से विमुख होकर स्व सन्मुख होने से अनुभव होगा। ये निर्मलता की बात है ना, ज्ञान निर्मल निर्मल होते चला जाता है। मेरा स्वरूप तो केवल केवल यानी मात्र ज्योति पुंज है, जिसको चैतन्य ज्योति कहे थे। चैतन्य को ही ज्योति की उपमा देते हैं। ज्योति जैसे दीपक की ज्योति है, वो स्वयं प्रकाशित प्रकाश है, अन्य को भी प्रकाशित करती है। ऐसे यहाँ ज्ञान को ज्योति की उपमा देते, दीपक की उपमा देते। तो मेरा स्वरूप तो केवल ज्योति पुंज है, चैतन्य मात्र है। वो चैतन्य हुआ है, न निकालना उसमें। ऐसी उपासना कर कि जिससे यह ख्याल आवे कि मेरा भी वही स्वरूप है जो तुम्हारा है। यानी भगवान की सच्ची उपासना कैसी होगी कि अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करना ही उनकी उपासना है। वह परमात्म तत्व का भक्त है, परमात्म स्वरूप का दर्शक है, क्योंकि द्रव्यत्व वही है किंतु व्यक्त नहीं है। क्या कहते हैं, जैसे भगवान का द्रव्य है वैसा मेरा भी है, स्वभाव उनका और मेरा समान, तो उनका जो सही स्वभाव है वैसा पूरा व्यक्त हुआ है और मेरा व्यक्त नहीं हुआ है, यही कह रहे हैं। द्रव्यत्व वही है, द्रव्यपना वैसा ही है, वो व्यक्त नहीं। द्रव्यत्व नहीं, वो द्रव्यत्व अकेले गुण की बात नहीं है, द्रव्यपना जो जैसे दो बर्तन नए लिए, दोनों एक जैसे हैं, उनमें से एक चूल्हे पर चढ़ा दिया तो वह काला हो गया, जो उनमें भेद आ गया बस वही भेद प्रभु में और मुझ में है। स्वभाव तो एक ही है किंतु मुझ में कलंक लगा हुआ है और प्रभु उसी प्रकार शुद्ध है। हम पर पदार्थों में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं नहीं, उसी को उपयोग होने वहीं पर लक्ष्य कर करके विकल्प बना रहे और वे इन सब से उपेक्षा भाव रखते हैं। वे नहीं ज्ञानी,
भगवान
अच्छा जानते सब कुछ है किंतु जानते हुए भी उपेक्षा भाव रखते हैं। किसी के मर जाने पर यह प्राणी करुण विलाप करता है और कहता है, हाय मैं तो मर गया, मेरा तो घर ही उजड़ गया, मेरी दुनिया में कोई न रहा। हे आत्मन, तेरा स्वरूप तो अरिहंत सिद्धों वाला है। सोचो कहाँ तो यह महत्ता और कहाँ ये विचार कि मैं लुट गया। हे भैया, तेरा लुट क्या गया, तेरा स्वभाव तो तेरे अंदर है। जो कुछ है वह स्वयं में है। अंतर्दृष्टि से मन वचन काय की प्रवृत्ति को एकाग्र करके देख तो सही। प्रवृत्ति को एकाग्र करके यानी अपना उपयोग जो उसमें उसके प्रवृत्ति में लग रहा है, तो हम कहेंगे उसका लक्ष्य छोड़कर अपने में एकाग्र हो जा। यहाँ कहते हैं नमोत्री योग समारी के, ये तो कहने की पद्धति है, यानी उसकी प्रवृत्ति छोड़कर अपना लक्ष्य करना है, इसको कहेंगे उसकी प्रवृत्ति को एकाग्र करना। यानी यहाँ वो मन का भी कार्य जो अन्य अन्य विकल्पों को छोड़कर, वो ज्ञानात्मक विकल्पों को नहीं छोड़ना है। ज्ञान तो होगा वहां पर, यानी ज्ञान से रहित तो नहीं होगा। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को एकाग्र करके, ये अभी आत्म भावना में बात आई थी नहीं, समाधि तंत्र में, उसमें भी आई थी ना, वो जल्प बहिर्जल्प छोड़कर अंतर जल्प छोड़कर काय का भी वो तो स्थिर करके वगैरह वगैरह बात। किसी काम को करेंगे तो वह होगा और यदि बात ही करते रहेंगे तो क्या वह होगा। यानी जैसे विकल्प ही करते रहेंगे या बस सुनते ही रहेंगे तो क्या होने वाला है। तो ये पहले भी बात आई थी ना प्रयोग की, यानी अंतर्मुख होने की बात है। अन्य प्रवृत्ति का लक्ष्य छोड़कर या अन्य प्रवृत्ति से निवृत्त होकर अपना लक्ष्य करना है। घर में यदि कूड़ा इकट्ठा हो जावे तो क्या वह बातें बनाने से दूर हो जाएगा? वह कार्य तो खुद के श्रम करने से ही होगा। अतः आत्मन, तेरे अंदर आनंद तो पूरा भरा हुआ है, आनंद से लबालब है, किंतु अंतर्दृष्टि से उपयोग करे तभी तो पान कर सकेगा। या अन्य में कुछ करना धरना है ही नहीं, बस अपना ही लक्ष्य करना है, उसी को करना है, क्योंकि हम अन्य तो कुछ कर ही नहीं सकते, यही तो कर सकते हैं।
सिमिली बराबर नहीं मिलेगा।
हाँ, सिमिली क्योंकि
लबालब भरा हुआ उसको प्राप्त करने के लिए स्वतः प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो कूड़ा बूढ़ा साफ करना है तो अपने को ही करनी चाहिए, यानी यहाँ सिर्फ फैमिली
वो तो
स्वयं कुछ करना चाहिए, इतना ही है।
हाँ, इतना ही लेना, यानी अपने करने से ही होगा, नहीं करने से, केवल बातें बनाने से नहीं होगा, बस इतना ही लेना है, इतनी फैमिली लेना। हाँ, हम स्वयं प्रयत्न पूर्वक यानी तत्व निर्णय करके अपने में उपयोग लगाना है। बार बार यही कहते ना, पर से विमुख होकर, यानी वो विकल्पों से भी विमुख होकर अपने में सन्मुख होकर अपने को जानना है। यानी केवल सुनता रहेगा और स्व सन्मुखता का कोई भी उसको यानी विचार भी नहीं आया होगा कि करने का, करना धरना तो दूर है भी, परंतु अपने सन्मुख होने से ही अनुभव होगा ये बात वो ख्याल में नहीं लेता है, और बस रोज सुनता ही रहता है, क्योंकि सुनने में उसको संतोष मान लिया, तो कैसे होगा ये कहना चाहते। यहाँ लिखा ना, अंतर्दृष्टि से उपयोग करे तभी तो पान कर सकेगा, तभी तो उसका अनुभव होगा, क्योंकि ज्ञान को ज्ञान में ही लगाना है तो उसका अनुभव होगा। ऐसा भाव जगावे तो उसका बेड़ा पार है, अन्यथा भटकते रहना होगा इन्हीं 84 लाख योनियों में। मैंने इसी भाव में नाना दुख सहन किए, बताओ कौन तुम हुआ मेरा रक्षक और किसका मैं रक्षक हुआ। हम याद करते थे, कभी हम बहुत बीमार थे, कभी कुछ हो रहा था, किसने बचाया या हमने किसको बचाया? हमारे जो कोई बहुत नज़दीक वाले वो नहीं रहे तो क्या हम उनको बचा सके? ये तो कोई किसी का रक्षक नहीं, बस इतना लेना है यहाँ पर। मैं तो सबसे भिन्न चैतन्य स्वरूप मात्र हूँ, इसका जितना भी दृढ़ विश्वास होगा। अभी अन्य की तो छोड़ो, इस शरीर का संयोग वियोग होने से भी हम फिर घबरा नहीं, जैसे मरण सामने भी अभी पता है कि अभी ये भयंकर बीमारी और इसमें से बचने वाला नहीं, तो भी उसको ऐसा दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप कायम रहने वाला, मेरा तो विनाश ही नहीं। यहाँ लिखते हैं ना, मैं तो सबसे भिन्न चैतन्य स्वरूप मात्र हूँ, इसका जितना भी दृढ़ विश्वास होगा, यानी उसकी बिल्कुल दृढ़ता, इसका अभ्यास, इसके वारंवार उसके प्रयत्न होंगे, तो जितना भी दृढ़ विश्वास होगा, दृढ़ श्रद्धान होगा, उतना ही सुख पावेगा यह जीव। सब प्राणी अलग अलग है, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमन करते, प्रत्येक द्रव्य ही करता है, तो प्रत्येक प्राणी जो प्रत्येक जीव भी अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमन करता है। एक जीव का दूसरे पदार्थों से अत्यंता भाव है, जो त्रिकाल में भी मेरा कुछ नहीं हो सकता, उसमें अपने पर की बुद्धि करना विपरीत मार्ग में लगना है, और जो उस विपरीत मार्ग पर चलेगा वह विपरीत अवस्था को प्राप्त होगा, दुख उठाएगा। नरक, तिर्यंच, मनुष्य देव, इन चारों गतियों में भ्रमण करते हुए दुख सहन करेगा। मैं तो सब जीवों से, इस शरीर से, राग द्वेष के भावों से, देखो क्या क्या कहा, पहले सब अन्य जीव लिया, अन्य सभी पर पदार्थ, इस शरीर से भी भिन्न, और तो राग द्वेष के भावों से इन सबसे न्यारा हूँ, वर्णादि और राग आदि सब कुछ ले लिए। मैं तो चैतन्य शक्ति मात्र हूँ, ये समय सार की बात है, इनके शब्द अलग अलग है। हाँ, यह अन्यत्र कहाँ प्राप्त होगा, यह तो यही ही है, मेरा यह सर्वस्व है, यानी कहीं अन्य तो ढूंढना नहीं है, मैं ही वो हूँ। जो इसकी भावना करेगा सो सुखी होगा। ये भावना का अर्थ हमने देखा था, आत्मभावना मेरा उस रूप परिणमित हो जाना। अतः मैं इसे प्राप्त कर आत्मा का कल्याण करता हुआ, यानी अपना ही कल्याण करता हुआ, अपने में, अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आप सुखी हूँ। ये सुख भी अपने में ही भरा है और उसका प्राप्त करने वाले हम ही हैं। कोई दूसरा आके प्राप्त करा दे, थोड़ा अंदर धक्का मारे तो अंदर जावे, ऐसा है नहीं। तो अपने में, अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आप सुखी हूँ। ऐसे भी हम षटकारक लगाते हैं ना, सब कुछ ऐसा ही ले लेना है। 17 नंबर, दुस्त्याज्याश्चेदतिस्त्यक्ता मृतस्त्यक्तकुटुम्बिनां स्वातन्त्र्यं स्यामि कि स्वस्य स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्। जब मैंने मरे व छोड़े हुए कुटुंबियों का दुस्त्याज्य, दुस्त यानी कठिनता से, त्याज्य मुश्किल से छूट सकने योग्य स्नेह छोड़ दिया, तो दुस्त्याज्या अचेत्रति कचेत्रति त्यक्ता मृत त्यक्त कुटुंबिनाम। दुस्त्याज्या चेत्रति त्यक्ता, यानी जो रति है ना उसके प्रति स्नेह, वो कैसी है? दुस्त्याज्य होने पर भी मैंने उसको छोड़ दिया। देख, हम हिंदी अर्थ पढ़ते, जब मैंने मृत और त्यक्त कुटुंबियों के, यानी मरे व छोड़े हुए कुटुंबियों का दुस्त्याज्य स्नेह छोड़ दिया, यानी जो स्नेह छोड़ने के कठिन है वो भी मैंने छोड़ दिया। क्यों? वो व्यक्ति नहीं रहा। ख्याल में आते हैं क्या कहते? तो अब किसमें स्नेह करके अपनी स्वतंत्रता नष्ट करूं? अतः सर्व अर्थों से राग हटाकर, अर्थ है ना पदार्थ, पदार्थ को, अन्य जीव को, अन्य जो कोई है, सर्व अर्थों से राग हटाकर अपने में, अपने लिए, अपने आप सुखी हूं।
यहाँ तो बताया जा रहा है जो मरे हुए हैं, हाँ, और जिनको उन्होंने छोड़ दिया
है, जो ऑलरेडी छोड़ गया अभी, हाँ, हाँ। तो नहीं, उसके लिए बात नहीं। देखो देखो, हम अपनी लौकिक की बात करना है यहाँ पर।
लौकिक
देखो, अभी मेरे पिताजी, अभी उनका देहांत तो होकर इतने 30-32-35 साल हुए, तो अभी वो उनके प्रति का भले हमारे याद में है, कभी याद होते तो उनके प्रति जो कुछ अपना प्रेम है, परंतु अभी तो छूट गए ना, अभी तो उनके प्रति कुछ नहीं रहा। त्यक्ता ने अब छोड़ दिया, यानी जैसे आपने माँ का घर छोड़ के अभी पति के घर में आए, तो वो भी छूट गए। या भी छोड़ देने में दूसरा भी, किसी ने डाइवोर्स दिया तो पहले जो प्रेम था वो तो नहीं रहा उसका, तो वो स्नेह भी उसने त्याग कर दिया, ऐसा ले सकते हैं?
मुझे वही कहना था, हाँ। छोड़े हुए की बात,
छोड़े हुए ने वो जो
मुझे और कुछ आने की बात, हाँ। बता दें,
हाँ।
ऐसा वास्तविकता मतलब ऐसी है कि हमारे जो मरे हुए हैं या छोड़े हुए व्यक्ति के प्रति हम प्रेम नहीं रखते, उनके प्रति जो मोह है वो छोड़ देते हैं,
हाँ।
जो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हमने ऐसे भी लोग देखे, मान लो किसी पति पत्नी को बच्चा नहीं होता है, या तो बच्चा गोद लेंगे या किसी भी प्रकार से कुछ भी करके बच्चा अपने घर में लाएंगे, तो मेरी भाषा में आ वेल मुझे मार वाली बात है।
क्योंकि उसमें सुख माना है ना, क्योंकि वो मेरे में कुछ कमी है और उससे मेरी पूर्ति होगी, ऐसा मान लिया। क्या क्या? दुस्त्याज्या चेत रति त्यक्ता, यानी रति यानी वो स्त्रीलिंग शब्द है ना, इसलिए वो कैसे दुस्त्याज्य है। दुस्त्याज्या चेत यानी वो तो उसे छोड़ दिया, तो स्वातंत्र्यम स्याने किम की हो गया, किम तो चाहिए ना, स्वस्य मैं क्यों ना किसमें स्नेह करके अपनी स्वतंत्रता नष्ट करूं। वो की लिखा है, वो किम होना चाहिए, की शब्द नहीं है संस्कृत में।
यानी ये अपनी स्वतंत्रता नष्ट करने का प्रकार हुआ ऐसा कहना
नहीं 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 किम उसके ऊपर बिंदी देना हाँ आगे बढ़ेंगे यानी अन्य चीजों से राग को छोड़कर या उसका लक्ष्य छोड़कर मैं अपने में स्थिर हो जाऊं जो आज नहीं अर्थात मर चुके हैं या अलग हो गए हैं उनमें मेरा सबसे अधिक स्नेह था मोह था अब जब वही छूट गए तो इन छोटे छोटे विषयों में क्या राग करना अच्छा अच्छा यानी वो जीव ही छूट गए ऐसा लेना चाहते हैं यानी जिनके प्रति स्नेह था वे भी छूट गए ऐसा कहना चाहते उन्होंने अर्थ करते हुए अलग लिखा है यानी जिनसे मेरा सबसे अधिक स्नेह था जब वही छूट गए तो इन छोटे छोटे विषयों में क्या राग करना जिस कुटुंब में जिससे भी सबसे अधिक मोह होता है फिर एक दो साल बीत जाने पर याद भी नहीं करते तब कहाँ गया वह मोह हम बचपन में भाई बहन इकट्ठा रहते थे सब हाँ बहुत एक दूसरे से झगड़े भी करते थे प्रेम भी करते थे अब सब अपने अपने कुटुंब में अलग अलग हो गए अभी सैकड़ों लोग भी अभी रोज थोड़ी उनकी याद आती है फिर जब तूने सबसे अधिक मोह को ही ममता को ही छोड़ दिया फिर अन्य बाह्य पदार्थों की ओर क्यों आकृष्ट होता है आखिर छूटेंगे तो ये सब भी एक न एक दिन तब क्यों इनमें राग बढ़ाकर दुखी होता जा रहा है ऐसी प्रकृति क्यों बना रखी है कि एक से छूटकर दूसरे में मोह करने लगे जैसे तुझे सबसे अधिक स्नेह जिस किसी में था उसकी मृत्यु हो गई तब कहाँ गए वे सुख विलास कहाँ गया वो मोह ममता जब तुझसे इतना बड़ा ही मोह बीत गया छूट गया तब इन बाह्य पदार्थों में फिर से क्यों राग द्वेष की वृद्धि करता है छूट तो ये भी जावेंगे एक न एक दिन फिर इनमें पड़कर क्यों स्वतंत्रता खो रहे हो क्यों मैं इनके प्रति मोह ममता की द्वेष की बुद्धि को नष्ट करूं? मरने पर किसी के बीत जाने पर सोचता है कि मेरा शरण कोई न रहा मैं लुट गया हे प्राणी चेत और विचार कर तो देख तेरा क्या लुट गया तेरी शरण है कौन तेरा सब कुछ तेरे में ही है तेरी शरण भी तू ही है उपादान ज्ञान बिगड़ा हुआ है अतः एक बात के एक पदार्थ के बीतने पर तू दूसरे के प्रति मोह करता है व्यर्थ में स्वतंत्रता खोता है मामूली बातों में अपनी स्वाधीनता खोता है अब अपना ज्ञान इतना निर्मल बनाओ ताकि बाह्य पदार्थों में राग बुद्धि ही न जागे यानी तो समता भाव उदासीन भाव सहज रूप से वर्तता है और अज्ञानी कैसे उसके ममत्व भाव ऐसा कि जो पर पदार्थ छूट जाने पर हाय मैं ही मर गया ऐसा लगता है उसको तो कहते अपना ज्ञान इतना निर्मल बनाओ निर्मल बनाओ यानी तत्व निर्णय ऐसा दृढ़तर करो कि बाह्य पदार्थों में राग बुद्धि न जावे जब अपनी योग्यता ठीक नहीं है तब प्रत्येक स्थान पर दुख ही प्राप्त होगा यानी हमारे कारण हम दुखी होते रहते हैं अपनी आत्मा का ध्यान करो और सुखी हो सबसे बड़ा सुख स्वतंत्रता है इसका यह मतलब नहीं कि उद्दंड हो जाओ दूसरे के साथ उद्दंडता से पेश आओ कर्म की अधीनता न रहे उसे स्वतंत्रता कहते हैं व्यवहार में भले ही स्वच्छंद हो जाओ किंतु कर्मों का उदय होने पर तो पराधीन ही है अतः अपने स्वरूप को पहचानो यानी पर से जो राग बुद्धि न होना का अर्थ है वो उद्दंड हो जाना या उसके द्वेष करने लगना ऐसा उसका अर्थ नहीं है ना ही स्वच्छंदता उसका अर्थ है अपने स्वरूप को पहचानो और पर पदार्थों से स्नेह हटाओ इसी का नाम स्वतंत्रता है
अपने
सोमावस
यही स्वतंत्रता है।
बस अपने स्वभाव का भान हो, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो, उसी का नाम स्वतंत्रता है। देखो उसी को धर्म कहते, उसी को स्वतंत्रता कह दिया। कितनी ही आपत्ति क्यों ना आवे तो भी ज्ञाता दृष्टा रहो, ऐसी सद्बुद्धि अंतरंग में आवे तो उसका नाम सच्ची आजादी है। अपने अनुभव से, आत्मानुभव से ये बात सिद्ध होगी, और उसके दृढ़ अभ्यास से, बारंबार उसी का अभ्यास करते रहने से, जिसको हम कहते भेद विज्ञान बारंबार करते रहना है। जब जिससे तीव्र मोह था उससे ही मोह छूट गया, तब इन छोटी छोटी बातों में क्यों राग करते हो? जैसे अपने बच्ची के प्रति तीव्र मोह हमको होता है और शादी ब्याह करके उसको भेज देते हैं, मोह कम हुआ ना, वो छूट गई तब कितना रोना आया था, अब वो अपने घर में है तभी तो अपना बाकी रूटीन डेली चलता है ना। ऐसा जैसे एक सेठ का किसी व्यक्ति पर 1,00,000 रुपया चाहिए था, वो हो गया गरीब, तो अन्य व्यक्तियों ने सेठ जी से कहा कि बेचारे की वह दशा न रही, अतः केवल 500 ही ले लो, 99,500 छोड़ दो। तो सेठ जी ने सोचा कि जब सभी छोड़ दिया तब 500 के लिए क्यों लेने का नाम करना। इसी प्रकार सोचना चाहिए, जब हमें जिससे कुटुंब में सबसे अत्यधिक राग मोह था वही बीत गया, तब इन थोड़ी थोड़ी बातों में क्या राग करना, क्यों ममता करना। मोह जन इष्ट के बीत जाने पर बहुत अधिक शोक करते हैं, हाय मैं लुट गया, मैं मर गया। यानी उसके भले धन का वियोग हो, पुत्र का वियोग हो या अन्य कुछ हो जाए, तो हाय मैं मर गया, अरे तेरा क्या लुट गया, तेरी आत्मा तो तुझ में है, उसका भजन कर। उसका भजन करने ने उसी के बारे में, उसी में लीन हो जाना। यदि यह दिख नहीं रहा
है,
यदि एकाकी जीवन मिला तो उसमें खेद क्या, अब तो बल्कि और खुशी होना चाहिए कि भगवान का ध्यान करने की योग्यता तो आ गई, मेरे भाव अब निर्मल बनेंगे। ऐसा विचार करना चाहिए उस परिस्थिति में, न कि दुख करना चाहिए। हमारी शोभा बहन है ना, अभी अमेरिका से आई है, अभी 3 साल हो गए, कल उनके आज का ही दिन है, उनके हस्बैंड का देहांत हो गया। तो शुरू में बहुत, अभी नेचुरल है, अभी अकेले भी हो गई और उनके याद में भी उनका जैसे बारंबार उनके विचार आना, शोक होना वगैरह, मैं क्या करूं, मैं अभी यहाँ आके कहीं मैं कहाँ जाऊँ, इधर आऊँ उधर आऊँ।
2,000 स्क्वायर फुट का घर है और अकेली, तो उसको जो रूम में जावे उसका भास होता है।
नहीं तो मैंने बोला कि अभी ये तेरा सुवर्ण काल है, क्योंकि अभी तो तंदुरुस्त है और स्वाध्याय की रुचि भी है, पहले से ही है, अभ्यास भी पहले हुआ है, तो अभी जितना हो सकता है, अभी अकेले और कुछ नहीं लेना देना। इतने अभी जो बीमार थे पहले उनकी इतनी आपने सेवा की, ये हुआ है, अभी तो आपको टाइम भी बहुत है, और अभी ऐसे ही नहीं कि बात की किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, तो ये सुवर्ण काल है, आप इसका अधिकाधिक उपयोग करो। तो उन्होंने भी दृढ़ता से वो बात सुनकर वो अपनाई, और अभी स्वाध्याय भी करते, वहाँ भी औरों को सिखाते, यहाँ तो आप देखते हैं दोनों टाइम सुनते भी है। अब कहते हैं कि भाभी आपने बताया था सच में कि मैंने ऐसा, नहीं तो क्या होता है शुरुआत में कि कोई तो आलम्बन चाहिए, नहीं किसके पास जाऊँ, मेरे पास अभी कौन मुझे सहारा देगा, कहाँ जाएंगे, तो मुझे किसकी तो कंपनी चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे विचार कर रहे थे नेचुरली। तो आप पहले बिल्कुल फॉर्म हो जाओ फिर आप यहाँ आना, नहीं तो क्या होता है कि ये मेरा भाई, ये मेरा,
मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा होती है, मैं बम्बई में आऊँगी, अपने रिश्तों वालों से मिलूंगी। मैंने कहा बिल्कुल मत आना,
पहले स्वयं अपने ये पहले नक्की करो, पक्का करो, फिर बाद में चले आना।
तुम यहाँ आओगी फिर यहाँ से जाते वक्त और रोओगी। अच्छा है कि आज वो नहीं सुन रही है
नहीं, वो स्वयं अभी बोलती है कि
आपने
जो सलाह दी,
आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं,
जो सलाह दी उस पर मैं चल रही हूँ।
तीसरे साल के बाद आई, तीसरे साल के करीबन आप भी आई हो।
एक बार आई थी। हाँ, उनका भी ये स्वाध्याय से ही हो गया। नहीं तो हर एक अभी किसी का प्रसंग आने पर ही होता है, ऐसा नहीं, भले अनुकूलता में हो प्रतिकूलता जो कुछ है, हमें तो ये विचार हर एक को करना है। आगे पढ़ेंगे।
क्या विचार करना, ये नहीं बताएं,
ये अपना अनुभव करना ही बात है, उसी की मुख्यता रखनी है। क्या कह रहे हैं? हाँ, वही तो, विचारों में लेना है। हम सुनते भले एक घंटा सुनेंगे, यही बात अपनी दिन भर चलेगी, यानी होते हुए कार्यों में ये मेरा 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 जो लग रहा है वो नहीं भाषित होगा। और भले वो घंटों तक तो ध्यान की या समय की बात है, वो अपनी भूमिका भी नहीं है, परंतु जब कभी होते 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट शांति से अपने सन्मुख होने के बारंबार जब कभी प्रसंग होता है, यही करने लायक है। आगे पढ़ेंगे। देखो
यहाँ पर क्या होता है, इन जनरल में बात कर रहा हूँ कि जो कुछ अपने लौकिक कार्य हो रहे हैं तो मैं करूँगा तो होगा, ऐसा कोई कहेगा। कोई कहेगा तुम कुछ नहीं करते, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। यानी कोई भी कार्य होना है तो तुमको प्रयत्नशील होना चाहिए, ऐसे एडवाइस भी दी जाती है, और अपना मन भी ऐसे ही कहते कि मैं कर रहा हूँ इसलिए सब हो रहे हैं। तो जब नहीं होता है तब और दुखी होता है।
यही तो, प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता हमें भाषित नहीं होती है तो ऐसा ही लगता है, हाँ तो मैं करूँ ना, करने का भाव होना, राग होना, वो बात अलग है।
मान्यता में,
हाँ मान्यता में या अभिप्राय में, जो देखो मैंने किया ना, नहीं तो कोई नहीं कर सकता था, या अभिमान हो जाता है उसका, उसकी बात है। ये तो बात छोड़ो, वो कैसे चलेगा, तो स्वसन्मुखता के अभ्यास से होगा। वो भले लौकिक कार्य चलते रहेंगे, फिर भी उसमें कैसे भी करके अपने लिए, उसके लिए कोई घंटा भर बैठने की तो आवश्यकता नहीं। वैसे स्वाध्याय के लिए तो हम इतना समय निकालते हैं, स्वाध्याय जब हम घर में भी करते हैं, कोई एक वाक्य हमको गहराई से अंदर अच्छा लगा कहो, या उस पर हम विचार करते हैं कि वाक्य ले लो, उस पर फिर होकर बैठ जाओ, विकल्प भी उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो हम आप इतने अभ्यास हो गए हैं, जिसको कहेंगे ना तो तत्व निर्णय तक पहुंचना है, तो किसी एक विचार पर आप दृढ़ता से, फिर उसको विचार, वो विचार भी छुटकर आत्मा का अनुभव होगा। अभिप्राय में एक लेना है कि बस इनसे दूर हटने से होगा, ये करते रहने से नहीं होगा।
नहीं, आप बताती हैं ना हमेशा, बनते हुए रोटी को जानो, ये बन रही है, मैं बना रही हूँ, ऐसा नहीं
है। सभी कार्य होते हुए दिखाई देना,
होते हुए कार्य को देखते रहना, बीमार हो गए देखते रहना
नहीं, वो ऐसा लगता है कि अपना कार्य नहीं है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलते हुए भी ऐसा भाषित होता है, अरे ये तो बोलना चल रहा है, जैसे आप सुन रहे हम भी सुन रहे, क्या बोलने वाले, तो ऐसा नहीं होना कि ये तो बातें कभी पहले तो पढ़ी नहीं हमने, अभी पढ़ रहे हैं, तो ये भी कार्य अपना नहीं है, ऐसा भाषित होता। रामचंद्र जी को सबसे अधिक मोह लक्ष्मण से था, ये बलभद्र और नारायण का ऐसा ही प्यार होता। उन्होंने केवली से ही पूछा था कि मुझे इसके प्रति इतना स्नेह है, वो भी जानते थे कि मेरा बहुत अधिक राग है इनके प्रति, तो सबसे अधिक मोह लक्ष्मण से था, ऐसा कि उसके मरने पर भी उस मृतक देह को लिए लिए फिरे, और जब उससे ही उनका मोह छूट गया तब किसी से मोह न रहा, फिर वे दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि हो गए और मुक्त हो गए। अतः जब सबसे बड़ा मोह ही बीत गया तो फिर छोटी छोटी बातों में क्यों पड़ना। मोही जीवों में ऐसी आदत पड़ी कि यदि बड़ा राग छूटा तो भी छोटे में प्रवृत्ति करके राग बढ़ा लेता है। देखो ऐसा कहते ना, अज्ञानी जीव घर छोड़ा क्योंकि हमें धर्म करना है, मुनि दीक्षा ले ली, तो बाहर जाके वन में बसे या अन्य कोई विहार करके चले गए, तो फिर भी अपना शिष्य परिवार बढ़ाए, उनके में राग करने लगा। यानी जो रागी है कहीं ना कहीं किसी न किसी संयोगों में वो राग करता ही रहता है। यहाँ कहते ना मोहितियों में ऐसी आदत पड़ी है।
ये मुनियों की बात क्यों, हम आपकी देख लो ना।
हाँ।
कि हम स्वाध्याय में जिस जगह पे बैठते हैं उस जगह पे दूसरा कोई बैठा तो सुहाता नहीं।
और चार दिन के लिए शिविर में जाते हैं।
हाँ,
हमारे रूम हमारे रूम हो गए।
एक बहन का फोन आया था, वो मुझको आगे की जगह चाहिए बैठने के लिए, आप व्यवस्था करेंगे क्या? मैंने कहा क्यों? बोले हम जाते जब तक तो सब लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मैंने कहा उसके पहले 5 मिनट जाओ तुम, और मैं क्या करूँ, किसको किसको जगह दूँ।
फिक्स होते हैं वहाँ, दूसरा कोई नहीं बैठता। हाँ, ये शिविरों में ऐसा होता है ना, अपने पहले दिन पहले जाके सारे आगे की जगह बुक कर लेते हैं। अभी डेली अभी वो डेली बैठने वाले होते हैं ना। ऐसे आपकी जगह पर कोई नहीं बैठता इधर। हाँ चले चले। यानी मोही है ना, उसको मोह करने की जो आदत है, कोई एक छूट गया तो दूसरे कोई ना कोई उसके तो वहाँ मिल जाते हैं ना, वो करता रहता है, ढूंढ लेता है। यहाँ लिखा ना, बड़ा राग छूट गया तो भी छोटे में प्रवृत्ति करके राग बढ़ा लेता है। आचार्य ने कहा है कि रागी होगा तो कर्मों से बंधेगा और वीतरागी होगा तो कर्मों से छूटेगा। कर्म मुक्त होना है तो राग छोड़ दो। जिनकी हम पूजा करते हैं, देखो राग छोड़ दो कहने से तो कैसा छोड़ना, हाँ उससे विमुख होना। देखो ग्रहण करना किसको कहते हैं, जानने को, वहां तो ग्रहण करना है ने जानना, और छोड़ना है ने अरे जानना छोड़ दो। यानी अपने सन्मुख हुआ तो उसको छोड़ दिया हमने, यानी अभी राग नहीं करना है ने, वो हम उसके कर्ता बनकर छोड़ने को जाते, वैसा नहीं है, इसका अर्थ समझना चाहिए। जिनकी हम पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, उन्होंने और किया क्या, अपने को निर्मल बनाया, अपना ज्ञान निर्मल रख, यानी जिसको कहेंगे ना कि तत्व निर्णय करना है, वीतरागी रहे, ज्ञान दर्शन शक्ति अनंत प्रकट हुई, स्वच्छ हो गए, कर्म रहित हो गए, परम आनंद को पाया, तब वे परमात्मा हो गए। अतः उनके दर्शन कर यही विचार पैदा करो, जैसा तुमने किया वैसा ही मैं भी करूं, और वह होगा भेद विज्ञान से, भावेद भेद विज्ञानम। कैसे, निरंतर इदम अच्छिन्न धारया, भेद विज्ञान के बल से पर पदार्थ से हटकर निज आत्मा में लगे। सभी जीव सभी ज्ञानी तो यही कह रहे हैं ना, और कहेंगे भी है, क्योंकि एकमात्र ये उपाय है। अभी आत्मभाव ने हर पेज पर यही पढ़ते आए हम, भेद विज्ञान करो, अपना और पर का लक्षण पहले जानो, पर से मैं भिन्न हूँ पहचानो, उनका लक्ष्य छोड़कर अपने में स्थित हो जाओ, बस यही भेद विज्ञान। चैतन्य मात्र अपने को अपने आप को निरखा, यह उपाय किया, निरखा ने उसी को जानते रहे। तो चैतन्य मात्र अपने आप को निरखा, यह उपाय किया, कर्म बंध टूटे, आत्मा में विकास हुआ। सब पदार्थों को जानकर भी अपने आनंद के रस में लीन रहे, यह विचार कर दर्शन करना चाहिए। यानी भगवान के दर्शन भी ऐसे करना चाहिए, भगवान ने क्या किया वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे बाल बच्चे सुखी रहे, इस भाव से दर्शन कर, इससे परतंत्रता बढ़ती है। हमने तो सब उसी का आधीन मान लिया ना, भगवान करे तो सब कुछ होगा। उस दिन बताया था हमको, एक जन मिले थे ट्रेन में, हाँ, यानी ईश्वर सब कुछ करता है, भोजन भी वही भेजता है, सब कुछ वही करता है, पत्ता भी नहीं। अपने भावों से ही यह प्राणी पराधीन होता है और अपने भावों से ही स्वाधीन होता है। हमने अपने आप को पराधीन मान लिया है तो क्या करें? ऐसा भी आता है ना, आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो वो स्वयं ही करेगा तो स्वाधीन है ही वो अपने भावों से। वैसे परमार्थ दृष्टि से देखा जावे तो यह किसी के अधीन है नहीं, किंतु अज्ञानवश काल्पनिक अपने भाव बनाकर अधीन बनता है। यानी अपने कल्पना से स्वयं को पराधीन मानकर बैठा है। यह आत्मा तो ज्ञान आनंद का पुंज है, न इसमें ज्ञान बाहर से आता है न आनंद ही, वह तो स्वयं ज्ञान मूर्ति है। ऐसा अपने को सोचे तो आनंद प्राप्त हो, सब जगह घूम आओ, आखिर में अपने को ही बड़ा पाओगे, अपना ही सहज स्वभाव बड़ा मिलेगा। राग छोड़ दो तो उपद्रव रहित हो जाओगे, अन्यथा क्लेश ही प्राप्त होगा। यानी राग ही दुख है ये बात ख्याल में आएगी तो उसको हम अपना मानकर, ज्ञान और राग को एक में मानकर बैठे हैं वो बात नहीं रहेगी, उससे भी भेद ज्ञान करना है। राग के कारण ही अंतर में ऐसा भाव का वातावरण बनता है कि मरण के बाद फिर भी शरीर को पाता है, जो कि दुख का मूल है। अब शरीर के भी राग को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, उसका ध्यान करो, मोह भी करो और ध्यान का आनंद भी मिल जावे, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। अतः राग त्याग कर अपने स्वरूप को पहचान कर, मैं अपने में अपने लिए अपने आप सुखी हूँ, यानी राग से भी मैं भिन्न हूँ जब हम जानेंगे तो ही उसका लक्ष्य छूटकर हम अपने में लीन हो सकेंगे। देखो यह राग भाव जो कि दुस्त्याज्य बन रहा है, दुस्त्याज्य यानी त्यागने के लिए कठिन, क्या है? यानी जो राग भाव जो त्यागने के लिए इतना कठिन हुए वो है क्या चीज, ऐसे पूछ रहे। तो केवल कल्पना का फैलावा है। वस्तु का विचार करो तो राग न तो आत्मा की चीज है, न कर्मों की चीज है और न विषयों की चीज है। हम भी कहते ना वो आत्मा में है ही नहीं है, आत्मा में राग नाम का कोई गुण ही नहीं है, राग करने वाला भी कोई नहीं है, ये तो पर्याय में है, क्षण मात्र है, विकार है। तो आत्मा ने हमने तो स्वभाव में मैंपना स्थापित किया तो हमें तो है ही नहीं है, कर्म तो जड़ है उसमें भी नहीं है और न ही ये कोई सामने वाली चीज में राग है। फिर भी इस माया में कैसा बानक बन रहा है कि विषयों का तो आश्रय है, कर्मोदय का निमित्त है और आत्मा का उस क्षण का वह एक परिणमन है। बानक बानक बंधक बंधक
बंधक है ना, बंधक बन रहा है कि विषयों का आश्रय बंधक हो,
बानक बन रहा है, विषयों का तो आश्रय है, कर्मोदय का निमित्त है और आत्मा का उस क्षण का वह एक परिणमन है। यानी विषयों का लक्ष्य कर रहा है उसी समय वो पुराने कर्मों का उदय निमित्त बन रहा है और आत्मा का वह एक समय का वो परिणमन है। परमार्थ से देखो तो कुछ भी तथ्य नहीं है, ये विषय भी छूटेंगे टलेंगे, जो पर पदार्थ है इनका संयोग ओ ललटप है, ओ ललटप क्या क्या शब्द है, कोई कायदे से या सिलसिले से या खातिरी से नहीं है, अलटप है पता नहीं, हाँ ऐसा कुछ है,
कोई
कायदे से सिलसिले से खातिरी से नहीं है, ऐसा ही वो होगा ऐसा कुछ बात नहीं होती, वो तो अपने स्वयं से बनते हैं संयोग बिगड़ते हैं। वे कर्मोदय भी उसी क्षण मिट जाते हैं जिनका की निमित्त पाकर ये रागादि भाव होते अगले क्षण अन्य कर्मोदय हो जाते हैं। इतनी विडंबना रहती है जिसका परिणाम यह है कि बंधन चलता रहता है, यानी अन्य रागादि कभी क्रोध होता है, कभी मान माया लोभ होते रहते, वो तो कर्मोदय भी निकल जाता है कि राग हुआ और कर्मोदय दूसरा निकल रहा है कि बंधन तो चलता रहता है। ये रागादि भाव भी एक क्षण होकर मिट जाते हैं। यह बात और है कि और रागादि भाव निरंतर होते चले जाते हैं। इन भावों में तथ्य कुछ नहीं है। रागादि भाव असार है, दुख रूप है, मिटते तो ये है ही। ज्ञान बल से खुद मिटा दिया जाए तो आनंदमय प्रभु के दर्शन भी होंगे। क्या कहते हैं, ये भी क्षण क्षण में मिट रहे, नए नए हो रहे हैं। जैसे ज्ञान बल से अगर उसको खुद ही मिटा दिया जाए तो अपने प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। इन रागादि भावों के कारण ही स्वतंत्रता का विनाश है, यानी वो राग को ये मेरे है मान के चल रहा है, इसलिए अपना स्वरूप उसको पहचानने में नहीं आ रहा। मैं तो राग से रहित स्वभाव वाला हूँ तो उसका लक्ष्य करेंगे तो उसके दर्शन हो जाएंगे। यानी रागादि भावों के कारण ही स्वतंत्रता का विनाश है, वास्तविक स्वतंत्रता का विनाश है। वास्तविक स्वतंत्रता का विनाश होने पर भगवान का दर्शन असंभव है। वास्तविक स्वतंत्रता है वो सहज स्वतंत्र अपना स्वभाव। तो अब रागादि भावों से भिन्न, यानी हम भिन्नता पहले जाननी है अपने ज्ञायक स्वरूप को लक्ष्य में लेकर। यानी रागादि मिटाने का प्रोसेस, उसका उपाय क्या है, तो रागादि से भिन्न मैं हूँ तो ज्ञायक स्वरूप को लक्ष्य में लेकर, यानी रागादि से विमुख होकर अपने ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करके स्वतंत्र हो और स्वयं स्वयं में आनंद मग्न हो। यही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक न सदा वेश हो। नलिन